एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो आर्थिक प्रगति और तकनीकी नवाचार के बारे में हमारी कई धारणाओं को, आप कह सकते हैं, चुनौती देती है। एक जरूरी पड़ताल है ये।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट जे गॉर्डन की चर्चित किताब द राइज एंड फॉल ऑफ अमेरिकन ग्रोथ की। और ये किताब ना एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है।
क्या सवाल?
सवाल ये कि क्या 1870 से 1970 के बीच अमेरिका ने जो जबरदस्त आर्थिक विकास देखा, वो इतिहास का बस एक सुनहरा लेकिन अनोखा दौर था जो शायद फिर कभी नहीं लौटेगा।
और देखिए, ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हम सब धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि, बढ़ती हुई असमानता और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, इनकी असली क्षमता क्या है, इस पर बहस कर रहे हैं। सही बात है। तो गॉर्डन की किताब हमें एक लंबा, एक ऐतिहासिक नजरिया देती है। हाँ। तो चलें शुरू करें इस विश्लेषण को खंगालना।
हाँ बिल्कुल, लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट जे गॉर्डन, ये कौन है?
हाँ, तो रॉबर्ट जे गॉर्डन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के एक बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
और वो दशकों से आर्थिक विकास, प्रोडक्टिविटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब पर काम कर रही हैं। लेकिन उनकी खासियत सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो इतिहास के आईने में देखती हैं आर्थिक रुझानों को, जिससे हमें बड़ी तस्वीर मिलती है, ज्यादा गहरी समझ मिलती है।
और उनका एक मुख्य फोकस रहा है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी टीएफपी। ये टीएफपी क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगी?
हाँ, देखिए, टीएफपी को आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे कि अर्थव्यवस्था कितनी कुशलता से अपने साधनों का इस्तेमाल कर रही है। साधन मतलब लेबर और कैपिटल, यानी लोग और पैसा या मशीनें।
अच्छा।
तो अगर आप उन्हीं साधनों से ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हैं तो मतलब आपकी टीएफपी बढ़ रही है। ये असल में दिखाता है कि नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी या बेहतर मैनेजमेंट का कितना असर हो रहा है।
तो ये इनोवेशन और एफिशिएंसी का एक तरह का पैमाना हुआ।
बिल्कुल। और गॉर्डन दशकों के टीएफपी डेटा को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो आजकल धीमी रफ्तार है अर्थव्यवस्था की, उसकी जड़ें कहाँ हैं।
और उनका नजरिया अक्सर जो आजकल का टेक आशावाद है, जिसे टेक्नो ऑप्टिमिज्म कहते हैं, उससे काफी अलग होता है। यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है।
हाँ, तो ये किताब आखिर कहती क्या है? इसका जो मेन तर्क है वो ये है कि 1870 से 1970 का वो 100 साल का दौर, जिसे गॉर्डन विशेष शताब्दी या स्पेशल सेंचुरी कहते हैं।
स्पेशल सेंचुरी।
हाँ, वो मानव इतिहास में आर्थिक और सामाजिक बदलाव का एक बिल्कुल अनोखा, ऐसा दौर था जो दोबारा नहीं आ सकता।
क्यों, ऐसा क्या खास था उस दौर में?
उस विशेष शताब्दी में कुछ गिने चुने लेकिन बहुत बड़े आविष्कार हुए, जैसे बिजली, इंटरनल कम्बशन इंजन यानी गाड़ी, ट्रक वाला इंजन, घरों तक साफ पानी और सैनिटेशन, मॉडर्न मेडिसिन।
हाँ, ये तो बुनियादी चीजें हैं।
बिल्कुल। और इन महान आविष्कारों ने जीवन के हर पहलू को जड़ से बदल दिया। ये सिर्फ कोई नए गैजेट नहीं थे, ये पूरी जीवन शैली का एक तरह से काया पलट था।
अच्छा, लेकिन फिर किताब का दूसरा हिस्सा भी है।
हाँ, और वो हिस्सा थोड़ा संजीदा करने वाला है। गॉर्डन तर्क देते हैं कि 1970 के बाद कंप्यूटर आया, डिजिटल क्रांति हुई, लेकिन उसके बावजूद अर्थव्यवस्था की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो बहुत धीमी हो गई।
हैरानी की बात है, कंप्यूटर से तो एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए थी।
हाँ, यही तो बात है। गॉर्डन का मानना है कि ये गिरावट कोई टेम्पररी चीज नहीं है, बल्कि हम इतिहास की जो सामान्य स्थिति है उसी में वापस आ गए हैं। वो जो विशेष शताब्दी थी वो एक असाधारण उछाल था, वो नियम नहीं था।
और वो अपनी बात साबित करने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण भी देते हैं।
हाँ, वो थॉट एक्सपेरिमेंट वाला।
हाँ, वही। सोचिए, आपको चुनना हो, या तो आप 2004 तक के सारे आविष्कार रख लें, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सब कुछ, लेकिन आपके घर में नल का पानी नहीं आएगा और ना ही फ्लश टॉयलेट होगा।
ओह, मुश्किल चुनाव है।
या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप 1950 तक के आविष्कार रखें, घर में नल भी है, टॉयलेट भी है, लेकिन उसके बाद का कुछ नहीं, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल, ना इंटरनेट।
सोचने वाली बात है। गॉर्डन का क्या मानना है, लोग क्या चुनेंगे?
उनका मानना है कि ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, इंडोर प्लम्बिंग वाला।
सही है।
और ये दिखाता है कि बिजली, पानी, सफाई जैसे जो बुनियादी आविष्कार थे, उनका हमारी जिंदगी पर कितना ज्यादा गहरा असर पड़ा था। शायद आज की डिजिटल सुविधाओं से भी कहीं ज्यादा।
ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है।
और भविष्य के लिए वो कुछ हेडविंड्स की बात करते हैं, मतलब ऐसी बाधाएं जो आगे ग्रोथ को और रोकेंगी, जैसे बढ़ती असमानता, शिक्षा में ठहराव, डेमोग्राफिक बदलाव, बढ़ता कर्ज।
अच्छा, तो किताब को समझने के लिए इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग यानी पार्ट वन 1870 to 1940, वो उन महान आविष्कारों और उनसे जीवन में आई क्रांति पर है।
हाँ।
गॉर्डन पहले बताते हैं कि 1870 में जिंदगी कैसी थी। अंधेरा, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम, खासकर औरतों के लिए घर का काम, बीमारियां आम थीं, लोग अलग थलग रहते थे, जीवन छोटा और मुश्किल था।
फिर आए वो महान आविष्कार, एक एक करके देखें तो बिजली।
हाँ, बिजली ने सिर्फ रात को दिन नहीं बनाया, उसने घर के काम आसान किए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोचिए, और फैक्ट्रियों में तो उत्पादन का तरीका ही बदल गया।
और फिर इंटरनल कंबशन इंजन, कार, ट्रक, ट्रैक्टर,
इसने तो दूरियां ही मिटा दी। गांव शहरों से जुड़ गए, खेती बदल गई, सामान ढोना कितना सस्ता और तेज हो गया,
और बहता पानी और सैनिटेशन, ये शायद सबसे बुनियादी बदलाव था।
बिल्कुल, शायद सबसे जरूरी। इससे बच्चों की मौतें कितनी कम हो गईं, लोगों की औसत उम्र बढ़ गई, जीवन की क्वालिटी ही बदल गई।
और इनके साथ रसायन, प्लास्टिक, दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स भी आए।
हाँ, तो इन सब का जो मिला जुला असर था ना, वो कमाल का था। खाना, कपड़े, रहन सहन, मनोरंजन, कम्युनिकेशन, सब कुछ बदल गया। और खास तौर पर वो जिसे गॉर्डन नेटवर्क्ड होम कहते हैं।
नेटवर्क्ड होम मतलब?
मतलब घर का बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, सीवर, इन सब नेटवर्क से जुड़ जाना। इसने घर के अंदर की जिंदगी में क्रांति ला दी।
अच्छा, अब आते हैं पार्ट टू 1940 to 2015 पर। ये पहले स्वर्ण युग 1940 to 1970 की बात करता है, और फिर 1970 के बाद आई महान मंदी या ग्रेट स्लो डाउन की।
हाँ, तो स्वर्ण युग में क्या हुआ कि पिछली सदी के जो आविष्कार थे उनका फायदा समाज में फैला। एयर कंडीशनिंग आम हो गई, हाईवे बन गए, हवाई जहाज में लोग उड़ने लगे,
खूब समृद्धि आई, मिडिल क्लास मजबूत हुआ, प्रोडक्टिविटी भी तेजी से बढ़ी।
लेकिन 1970 के बाद तस्वीर बदल गई। अचानक वो जो TFP थी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी इनोवेशन की रफ्तार, वो गिर गई।
क्यों, ऐसा क्यों हुआ?
गॉर्डन कहते हैं कि जो आसानी से मिलने वाले फल थे ना, मतलब लो हैंगिंग फ्रूट, वो तोड़ लिए गए थे।
आसानी से मिलने वाले फल मतलब?
मतलब जैसे घोड़े से कार पर आना, या बाहर के टॉयलेट से घर के अंदर फ्लश टॉयलेट पर आना, ये बहुत बड़े बुनियादी बदलाव थे। ये अब हो चुके थे, इनसे जो प्रोडक्टिविटी में बड़ा उछाल मिलना था वो मिल चुका था, अब और वैसा उछाल नहीं आ सकता था।
फिर आई तीसरी औद्योगिक क्रांति, डिजिटल युग, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल।
हाँ, और गॉर्डन मानते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है।
हाँ।
पर उनका तर्क है कि इनका असर उन पहले वाले महान आविष्कारों जितना गहरा या व्यापक नहीं रहा है।
तो मतलब व्हाट्सएप या फेसबुक से हमारी जिंदगी बदली तो है, पर अर्थव्यवस्था की रफ्तार उस तरह नहीं बढ़ी।
गॉर्डन के हिसाब से बिल्कुल, वो मानते हैं कि डिजिटल क्रांति ने मुख्य रूप से कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को बदला है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, खाना पीना, अर्थव्यवस्था के इन बड़े हिस्सों में प्रोडक्टिविटी पर इसका असर उतना क्रांतिकारी नहीं रहा।
हाँ, वो 1996 से 2004 के बीच एक छोटे उछाल की बात करते हैं शायद।
हाँ, वो मानते हैं कि जब इंटरनेट का बिजनेस में इस्तेमाल तेजी से फैला तब एक उछाल आया था, लेकिन उसके बाद वो घटते रिटर्न्स देखते हैं, मतलब असर कम होता गया।
और उनका एक तर्क ये भी है कि हम जो अपना ज्यादातर समय डिजिटल डिवाइस पर बिताते हैं,
हाँ,
वो असल में हमारे खाली समय का एक रूप से दूसरे में बदलना है। जैसे पहले TV देखते थे, अब YouTube देखते हैं, ये कोई मौलिक आर्थिक बदलाव नहीं है।
वो तुलना करते हैं 1890-1940 के बीच घर में आए बदलावों की, जैसे वॉशिंग मशीन, और 1970-2015 के बीच ऑफिस में आए बदलावों की, जैसे ईमेल।
और कहते हैं कि घर में जो बदलाव आए थे वो कहीं ज्यादा बुनियादी और जिंदगी बदलने वाले थे।
सही बात है। अब किताब का पार्ट 3 है, जो भविष्य की धीमी ग्रोथ के कारणों और उन बाधाओं यानी हेडविंड्स पर फोकस करता है।
हाँ, ये हेडविंड्स क्या हैं? पहली है डेमोग्राफिक्स, मतलब पश्चिमी देशों में बेबी बूमर पीढ़ी रिटायर हो रही है, जन्मदर कम है, काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं। दूसरी है शिक्षा, मतलब लोगों की औसत पढ़ाई का स्तर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना पहले बढ़ा था, और कॉलेज की फीस बढ़ रही है, बच्चों पर कर्ज बढ़ रहा है।
तीसरी और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, असमानता, गैर बराबरी।
हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है।
इनकम में जो भी बढ़ोतरी हो रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर के 1% या 10% लोगों के पास जा रहा है, बाकी 99% लोगों की इनकम या तो बढ़ी नहीं या बहुत धीरे बढ़ी है।
और इससे ग्रोथ कैसे रुकती है?
देखिए, जब ज्यादातर पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में होगा तो आम लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है, इससे पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड घटती है।
और चौथी बाधा?
कर्ज। सरकार पर बढ़ता कर्ज, आम लोगों पर बढ़ता कर्ज, ये भविष्य में निवेश करने और खर्च करने की गुंजाइश को कम करता है।
और इन सबको मिलाकर गॉर्डन का निष्कर्ष काफी निराशाजनक है।
हाँ, उनका अनुमान है कि भविष्य में कम से कम अमेरिका में नीचे के 99% लोगों की प्रति व्यक्ति आय ग्रोथ लगभग शून्य रह सकती है।
शून्य?
ये तो चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण से क्या मुख्य बातें निकलती हैं, क्या है वो अहम संदेश?
मेरे लिए पहली और शायद सबसे बड़ी बात यही है कि वो विशेष शताब्दी 1870 से 1970 वाली वाकई एक असाधारण, एक स्पेशल टाइम था इतिहास में। ये सोचना कि वैसी तेज ग्रोथ नॉर्मल है या हमेशा चलती रहेगी, ये शायद सही नहीं है।
हाँ, उस दौर की खासियत को समझना जरूरी है। और दूसरी अहम बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी, हर इनोवेशन एक जैसा नहीं होता।
मतलब
जो आविष्कार हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं, सफाई, सेहत, बिजली, आना जाना, उनका असर उन आविष्कारों से कहीं ज्यादा गहरा होता है जो सिर्फ मनोरंजन या कम्युनिकेशन को थोड़ा बेहतर बनाते हैं।
वो गॉर्डन की बात याद आती है, फ्लश टॉयलेट ट्विटर से ज्यादा महत्वपूर्ण था।
हाँ, बिल्कुल। और तीसरा संदेश, 1970 के बाद जो प्रोडक्टिविटी में सुस्ती आई है वो शायद ढांचागत है, स्ट्रक्चरल है, वो सिर्फ कोई अस्थाई उतार चढ़ाव नहीं है।
वो आसानी वाले फल अब पेड़ पर नहीं है
शायद। और चौथा, डिजिटल इनोवेशन की अपनी सीमाएं हैं। हाँ, वो जरूरी हैं, जिंदगी बदली है, पर अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में वो बिजली या इंजन जितने कामयाब नहीं रहे हैं।
लेकिन आजकल AI की इतनी बातें हो रही हैं, क्या AI अगला बड़ा बदलाव नहीं ला सकता? गॉर्डन का इस पर क्या विचार है?
देखिए, ये किताब 2016 में आई थी, तो AI की जो एकदम हाल की तरक्की है वो शायद इसमें पूरी तरह नहीं है, लेकिन गॉर्डन का जो मूल तर्क है वो शायद AI पर भी लागू होता। सवाल ये नहीं कि AI प्रभावशाली है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये पूरी अर्थव्यवस्था में, हर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को उसी पैमाने पर बढ़ाएगा जैसा बिजली या इंजन ने किया था। गॉर्डन शायद इस पर शक करते, वो कहते कि इंतजार करना होगा, देखना होगा।
सही है। और पांचवा और आखिरी मुख्य संदेश क्या था?
वो हेडविंड्स, यानी असमानता, शिक्षा, डेमोग्राफिक्स और कर्ज, ये भविष्य के ग्रोथ पर एक बहुत बड़ा ब्रेक है।
और ये समस्याएं टेक्नोलॉजी से अलग काम करती हैं, मतलब कल कोई चमत्कार हो भी जाए,
हाँ, तो भी ये बाधाएं उस चमत्कार का फायदा आम लोगों तक पहुंचने से रोक सकती हैं।
किताब में कुछ यादगार पंक्तियां भी हैं, कुछ दोहराते हैं।
हाँ, जैसे पहली, गृह युद्ध के बाद अमेरिका में क्रांति राजनीतिक नहीं, आर्थिक थी। ये मानव इतिहास में अद्वितीय थी, जिसे दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी कई उपलब्धियां केवल एक बार हो सकती थीं। ये उस विशेष शताब्दी की अनोखी बात पर जोर देता है।
मुसरी, नवाचार नए उत्पाद और प्रक्रियाएं बनाता है, लेकिन सभी नवाचारों का उत्पादकता और आर्थिक विकास पर समान प्रभाव नहीं पड़ता।
ये वही बुनियादी बनाम सुविधा वाली इनोवेशन का फर्क है।
बिल्कुल।
तीसरी, आर्थिक विकास को धीमा करने वाली बाधाएं, हेडविंड्स, अस्थायी उलटफेर नहीं है, बल्कि आर्थिक माहौल में मौलिक परिवर्तन है। ये याद दिलाता है कि ये समस्याएं गहरी हैं, सतही नहीं।
और चौथी, जो मुझे खास तौर पर आज के लिए जरूरी लगी, अमेरिकी आर्थिक विकास का भविष्य हमारी नवाचार करने की क्षमता से उतना निर्धारित नहीं होगा जितना कि नवाचार के लाभों को बाधित करने वाली संस्थागत और सामाजिक बाधाओं को दूर करने की हमारी क्षमता से।
हाँ, मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस करना काफी नहीं है, हमें असमानता, शिक्षा, कर्ज, इन सामाजिक और संस्थानगत मुद्दों से भी निपटना होगा।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, क्या कर सकते हैं हम?
देखिए, पॉलिसी बनाने वालों के लिए शायद सबसे बड़ा सबक है कि ग्रोथ रेट की उम्मीदें थोड़ी वास्तववादी रखें, हकीकत के करीब, और सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे न रहें, उन हेडविंड्स पर काम करें, शिक्षा, असमानता, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
और बिजनेस के लिए
शायद उन्हें भी अपने ग्रोथ की उम्मीदों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़े, किसी एक जादुई टेक्नोलॉजी पर सब कुछ दांव पर लगाने के बजाय जो चल रहा है उसी में कुशलता बढ़ाना, लागत कम करना, कर्मचारियों की स्किल बढ़ाना, ये ज्यादा सुरक्षित हो सकता है।
और हम आप जैसे आम लोगों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर,
ये हमें याद दिलाता है कि शायद हमें धीमी सैलरी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उसी हिसाब से करनी होगी
और ऐसे स्किल्स सीखने पर ध्यान देना होगा जो मशीनें आसानी से ना कर सकें।
हाँ, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों को समझना, वो सब। और एक समाज के तौर पर शायद हमें GDP के आंकड़ों के पीछे भागने से थोड़ा आगे देखना होगा।
जीवन की गुणवत्ता, सेहत, शिक्षा, पर्यावरण बराबरी, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा।
बिल्कुल। और हाँ, उन बुनियादी सुविधाओं की ज्यादा कद्र करनी होगी। साफ पानी, बिजली, सफाई, अच्छी सड़कें, जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर जिन्होंने असल में आज की जिंदगी को मुमकिन बनाया है।
तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? आपके लिए सबसे असरदार बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये एहसास है कि वो जो तेज ग्रोथ का दौर था वो कितना असाधारण था और शायद कितना नाजुक भी। हमें उन बुनियादी आविष्कारों का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये सब हमेशा से नहीं था। ये नजरिया हमें थोड़ा विनम्र बनाता है।
और मेरे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भविष्य की चुनौतियां सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ी नहीं है। गॉर्डन हमें याद दिलाते हैं कि असमानता, शिक्षा, कर्ज जैसी सामाजिक और संस्थागत रुकावटों को दूर करना उतना ही जरूरी है या शायद उससे भी ज्यादा, जितना कि अगली बड़ी टेक्नोलॉजी का इंतजार करना। ये किताब आजकल के तकनीकी आशावाद के माहौल में एक जरूरी, एक यथार्थवादी संतुलन लाती है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।